SBS Audio is supported by advertising.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
हमसे जुड़िए जब आप चाहें SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन SBS ऑडियो ऐप SBS साउथ एशियन के यूट्यूब चैनल या फिर थर्ड पार्टी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई पर आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर शाम 5 बजे डिजिटल रेडियो टीवी चैनल 305 SBS ऑन डिमांड या फिर हमारी वेबसाइट पर भी
नमस्कार मैं हूँ नताशा कॉल SBS हिंदी टीम से भारतीय स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो इंडिया गॉट लेटेंट को लेकर भारत में एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया ने इस रियलिटी टीवी शो में माता पिता को लेकर कुछ ऐसी अश्लील टिप्पणियां कही जो हम इस ऑडियो में दोहरा नहीं सकते लेकिन आपको बता दें कि रणवीर के इस कॉमेंट के वायरल होने के बाद उनके इस बयान से बवाल मच गया रणवीर की जबरदस्त आलोचना हुई और सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि भारत में संसद तक बहस छिड़ गई हालांकि रणवीर ने अपने सोशल मीडिया पेज पे लोगों से माफी भी मांगी है लेकिन अब मुंबई पुलिस और असम पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और वहीं तमाम राजनीतिक दलों के नेता इस मुद्दे पर समय समय पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस पॉडकास्ट में हम जुड़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय मूल के कुछ स्टैंड अप कॉमेडियनों से जो हमें अपने विचार और अपने कंटेंट के बारे में बता रहे हैं
हाय मेरा नाम आरती विंसेंट है और मुझे ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए 18 साल हो गए हैं तकरीबन एंड कॉमेडी करते हुए 6 साल
आरती आपने भारत में चल रहे नामी पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया का विवाद सुना होगा जहां उन्होंने माता पिता को के निजी संबंधों को लेकर कुछ अश्लील टिप्पणियां की और इस बात को लेकर बहुत बड़ा विवाद भारत में चल रहा है इस विवाद को आप कैसे देखती हैं
मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों के पास और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको हम फोकस कर सकते हैं लाइक रिस्पेक्टिंग वुमेन यू नो हम लोगों के देश में इतनी ज्यादा बदतमीजी की जाती है औरतों के साथ आई थिंक अगर हम उस पे फोकस करें और उसको बेटर करें और अपने यू नो बेटों को स्पेशली अपनी मेल यू नो आदमी जनरेशन को सिखाएं कि औरतों की इज्जत कैसे की जाती है कंसेंट क्या होता है उन मुद्दों पे फोकस करें तो हम एक बहुत बेटर और बेहतरीन सोसाइटी बन सकते हैं रादर देन फोकसिंग ऑन व्हाट समवन सेड ऑन सम पॉडकास्ट व्हिच नॉट मेनी पीपल इवन लिसन टू
जी अच्छा आप एज एन आर्टिस्ट कितना ध्यान रखती हैं जब आप खुद अपना कंटेंट जब बनाती हैं कॉमेडी जब लिखती हैं
डिपेंड लाइक आई थिंक मैं काफी वाइज हूँ इफ आई मे से दैट एंड आई एम क्वाइट वाइज टू अंडरस्टैंड एंड रीड द रूम एक रूम को रीड करना आना चाहिए एज एन आर्टिस्ट एज अ कॉमेडियन तुम्हें पता होना चाहिए इफ आई अगर मैं किसी बार में परफॉर्म कर रही हूँ या मेरा अपना शो है मुझे पता है मेरे कैसे ऑडियंस आ रहे हैं उस हिसाब से मैं अपना कंटेंट रखूंगी
जी और क्या आप भी भारतीय समाज की सच्चाई को ध्यान में रखकर लिखती हैं कि आप वेस्टर्न कल्चर को जहन में रख के लिखती हैं
आई write from personal observations. And उस वक्त मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, मेरा कॉन्टेंट बहुत ही ब्रॉड कॉन्टेंट है. इट्स अबाउट रेसिज्म, इट्स अबाउट बींग अ मदर, बींग अ वाइफ, इट्स अबाउट बींग अ डॉटर. देर आर सम जोक्स अबाउट माई मदर, माई फादर, यू नो, डेथ. सो इट्स आई डोंट मुझे नहीं लगता कि कोई भी कमेडियन ये सब सोच के लिखते हैं. हर कमेडियन, कॉमेडी इज एन आर्ट फॉर्म, और हर एक आर्टिस्ट अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को, पर्सनल लाइफ को, वो क्या देखता है, क्या महसूस करता है, उसको अपने आर्ट फॉर्म में उतारता है.
आप तो, मेरा नाम अतीव गैंग्स है और मैं यहाँ पर स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ मेलबर्न में, डूइंग दैट सिंस 2018.
जी, आपका क्या मानना है अतीव, क्या लोगों का गुस्सा उस कमेंट पे जायज है?
Like it was a stupid comment, but ये जोक है जो टीनेजर्स आपस में बहुत करते हैं, अमेरिकन टीनेजर्स भी करते हैं. एक शो है ट्रूथ और ड्रिंक, उसमें 1980s में ये जोक पहली बार यूज किया गया था.
जी.
And a lot of teenagers do that. हमने स्कूल टाइम पर ऐसे जोक सुने हैं. It was cringe, there's no doubt about that. But उसमें इतना ज्यादा आउटरेज वाली कोई बात नहीं थी. लाइक मैं यही कहता हूँ कि कोई भी बात कहने के पीछे उनका इंटेंशन क्या था, उसका इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं था. इट वॉज अ जोक टू मेक पीपल लव, इट वॉज सिर्फ अ जोक, प्लेन जोक, बट इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं था. आउटरेज करना है तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू आउटरेज अबाउट. जैसे कि रिसेंटली वाटर पॉल्यूशन इंडेक्स में इंडिया केम थर्ड फ्रॉम द बॉटम. देर आर ओनली टू कंट्रीज लेफ्ट इन इंडिया. लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, आप उस पर आउटरेज कीजिए ना, एक जोक को लेकर आप आउटरीच कर रहे हैं.
जी, मगर डिजिटल एज में आज मनोरंजन के नाम पर कुछ भी बनाया जा रहा है, तो क्या किस तरह की बाउंड्री सेट होनी चाहिए जब कंटेंट क्रिएटर्स की बात करते हैं, जब कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडियन की बात करते हैं, या जब इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं?
आप कोई भी जोक लिखो, किसी ना किसी को वो ऑफेंड करेगा ही कहीं ना कहीं. मेरा पॉइंट वही आता है घूमकर कि जो आपने बात कही है उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या, आपका इंटेंशन किसी को हर्ट करना है, आपका इंटेंशन खाली ऑडियंस को एंटरटेन करना है. इस केस में रणवीर अलाहाबादिया का वही इंटेंशन था. इफ यू डूइंग अ हेट स्पीच किसी को हर्ट करने के इंटेंशन से, आप ऐसा कोई कमेंट किसी को डिलिबरेटली हर्ट करने के लिए कह रहे हैं, तब आउटरीच बनता है. बट लाइक इट ऑल कम्स डाउन टू व्हाट द इंटेंशन वाज.
अतीब, ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का जो डार्क ह्यूमर है उसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? किस प्रकार के जोक्स ऑस्ट्रेलिया में किए जाते हैं? इंटरनेशनल कॉमेडी शो जो मेलबर्न में होता है, वो बहुत एक पॉपुलर इवेंट है, उसमें किस प्रकार की डार्क कॉमेडी देखने को मिलती है?
डार्क कॉमेडी का एक अपना जॉनर है. मैक्स अवार्ड्स जहाँ पर मेलबर्न कॉमेडी फेस्टिवल के पेड इवेंट होते हैं, सारे कॉमिक्स आते हैं, वहां पर एक डार्क कॉमेडी होता है. रोज रात को 10 to 11 मेरे ख्याल से दो शो होते हैं डार्क कॉमेडी स्पेशल. उसमें से एक तो हमारा इंडियन ही रन करते हैं डार्क कॉमेडी स्पेशल रात को 10 to 11. देन देयर इज मॉरी मॉर्गन हु रन्स डार्क कॉमेडी स्पेशल, एंड they are always the first ones to get sold out. I'll be honest about that. एक उनकी अपना डिमांड है. एक ब्रिलियंट शो है, अवार्ड विनिंग शो, वो भी हमारे इंडियन भाई रन करते हैं, रेसिस्ट इमिग्रेंट्स. They are immigrants come and make racist jokes, but people again see कि उसके पीछे intention है, just to make people laugh. They're not being racist. And it comes with that warning that yes, there will be racist jokes in this. So if you're not comfortable, don't come.
So, मेरा नाम आदित्य गौतम है, मैं सिडनी में रहता हूँ, I'm a stand-up comedian, और मैं ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट फेस्टिवल्स में परफॉर्म करता हूँ अपने कॉमेडी शोज और प्रोड्यूस भी करता हूँ कॉमेडी शोज.
जी आदित्य, आपने रणवीर अलाहाबादिया का विवाद तो सुना ही होगा, हमें बताएं आप इस विवाद को किस प्रकार देख रहे हैं?
ये विवाद मतलब आई गेस फ्रॉम कॉमेडियन के पर्सपेक्टिव से ये एक और एग्जाम्पल है ऑफ हाउ हमारी मिस्ड प्लेस्ड प्रायोरिटीज का, आई थिंक हमारे देश में, इंडिया में, कि आई डोंट थिंक ये चीज इतनी बड़ी होनी चाहिए.
आदित्य, क्या आप डार्क ह्यूमर अपनी कॉमेडी जो आप लिखते हैं उसमें यूज करते हैं?
तो मैं जो अपना पर्सनली जो मैं शोज करता हूँ उनमें मैं डार्क ह्यूमर बिल्कुल नहीं यूज करता, क्योंकि वो मेरी पर्सनैलिटी नहीं है उस टाइप का ह्यूमर करने की. पर मैंने डार्क कॉमेडी शोज में परफॉर्म कर रखा है, जैसे कि जिस टाइप का वो शो था जिसके बारे में कंट्रोवर्सी हो रही है, इस टाइप के शोज यहाँ पे भी बहुत होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, हमारे फेस्टिवल्स में भी बहुत होते हैं। तो जब मैं इस टाइप के किसी शो में जाता हूँ तो मैं कुछ डार्क टॉपिक्स के बारे में मजाक करता हूँ, और आई विल टॉक अबाउट दोस टॉपिक्स जो मैं यूजुअली कभी अपने शोज में नहीं करूंगा, पर क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट उन शो का ही डार्क ह्यूमर है, तो उनमें आप डार्क ह्यूमर के बारे में बात नहीं करोगे तो क्या ही मजा आएगा। तो आई डू डू इट, आई डोंट डू इट अपने खुद के शोज में नहीं करता, पर अगेन मेरा गोल कॉमेडी शो में ये नहीं है कि किसी को ऑफेंड करूं, मैं
जी
ऑब्वियसली मेरा गोल है कि सब लोगों को मजा आए और सब लोग हंसे और एवरीवन हैज अ गुड टाइम। पर मैं बहुत ज्यादा भी नहीं सोचता उन चीजों के बारे में, बिकॉज मैं ऑनेस्ट भी होना चाहता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो जिनको लगता है कि वो किसी चीज से ऑफेंड हो रहे हैं, अगर एक्चुअली एक मैं इसको एक चैलेंज की तरह भी देखता हूँ कि अगर आप मेरे सामने बैठे हुए हो और आपको लगता है कि लेट्स फॉर एग्जांपल से कि क्लाइमेट चेंज के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, मेरे को बड़ा ऑफेंसिव लगता है, तो मेरे लिए एज एन आर्टिस्ट ये चैलेंज है कि मैं क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर पाऊं और ऐसे तरह से जोक बोलूं कि आपको भी हंसी आ जाए, जबकि आपको लगता है उसके बारे में नहीं बात करनी चाहिए। तो आई ऑल्सो सी दिस एज अ चैलेंज कि आई
जी
शुड बी एबल टू मेक एवरीबडी लाफ विदाउट ऑफेंडिंग एनीबडी, इवन पीपल हु थिंक दे आर ऑफेंडेड। हाँ,
एज एन आर्टिस्ट आप ऑस्ट्रेलिया में अपने आप को कितना सेफ पाते हैं?
ऑस्ट्रेलियन कॉमेडी सीन अगेन बहुत ज्यादा और ओपन और लिबरल है कि यहाँ पे कंट्रोवर्सी होती भी है, जो हुई है पिछले कुछ सालों में कुछ कॉमेडियंस के बातों को लेके, वो कंट्रोवर्सी ना कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंचती जिस लेवल तक हमारी चीजें पहुंच गई हैं कि पुलिस केस हो गए, ये सब बिल्कुल भी नहीं होता। कंट्रोवर्सी वो ज्यादा से ज्यादा ये होती है कि कुछ इंटरनेट पे थोड़े बहुत लोगों ने बात कर ली उसके बारे में, बस। तो आई फील वे मोर प्रिविलेज कि मैं यहाँ पे किसी भी चीज के बारे में बात कर सकता हूँ।
लेकिन सिडनी में रह रहे फिल्म मेकर अनुपम शर्मा का दृष्टिकोण अलग है। उनका कहना है कि ये सब सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाने के लिए किया गया है और इस दौड़ ने एक बीमारी का रूप ले लिया है।
ऐसा है नताशा जी, जो अलाबादिया का जो केस है वो एक लक्षण है गहरी बीमारी का, और वो बीमारी है प्रतिभा के ना होते हुए आंकड़ों पे विश्वास करना। अब अगर मुझे फिल्में डायरेक्ट करनी नहीं आती, मुझे फेम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ भी ऐसे करूंगा कि मुझे आंकड़े मेरे यूट्यूब व्यूज बढ़े। और ये दो राह सड़क है ये, क्योंकि आजकल कई प्रोड्यूसर्स कई डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो लोगों को एक्टिंग रोल्स में ले रहे हैं, उनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब फॉलोअर्स की जाते रहे।
जी
तो अगर अब वो पुराने जमाने में जो कवि होते थे, कवि सम्मेलन होते थे, वो भी कंटेंट क्रिएटर होते थे। अब अगर मेरे पास प्रतिभा नहीं है लेकिन मुझे यश चाहिए, मुझे फेम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी भी तरह से जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना अटेंशन सीकिंग सिंड्रम,
जी
वो करूंगा। अब जहां तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी, खासकर भारत जैसे देश में जहां नाना प्रकार की संस्कृतियां हैं, भाषाएं हैं, लोगों के संवेदनशील लोग हैं, बट उन सबसे ऊपर क्या आपका कंटेंट में क्रिएटिविटी है। जो अलाहाबादिया ने बोला मैं उसको दोहराऊंगा नहीं,
जी
लेकिन उसमें क्या क्रिएटिव तो सब जानते हैं।
जी
अगर आप मुझ में प्रतिभा नहीं है और मुझे आंकड़े चाहिए, तो मैं भी शायद वही करूंगा जो आजकल कई इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूब क्रिएटर्स कर रहे हैं। किस तरह मैं फॉलोअर्स बढ़ाऊं, क्यों फॉलोअर्स बढ़ाऊंगा, तो पैसे बढ़ेंगे, मुझे लोग इन्फ्लुएंसर्स बोलेंगे, और अगर मेरा बस चले कभी भी तो सबसे पहली बात तो ये इन्फ्लुएंसर शब्द जो है इसको बदलना पड़ेगा,
जी
क्योंकि ये बहुत बड़ी मिथ्या क्रिएट करता है।
जी
इन्फ्लुएंस करने वाले हैं जावेद अख्तर, इन्फ्लुएंस करने वाले हैं शाहरुख खान, इन्फ्लुएंस करने वाले हैं वो संगीतकार, वो राइटर्स। माँ बाप के बारे में अभद्र बातें कहकर, लोगों में जिज्ञासा बढ़ाकर, और उनको इस बात पे बाध्य कर देना कि मेरे यूट्यूब पे देखो मैंने कहा क्या, और अपने आंकड़े तब 4-5 करोड़ करना कोई प्रतिभा है क्या? तो बड़ी दुख की बात है कि हमारा जो ये भंवर बना हुआ है ना आंकड़ों का, जिसे बोलते हैं द व्हर्लपूल ऑफ स्टैट्स, कि प्रोड्यूसर को इस इतने सारे जंगल में अपना झंडा कैसे गाड़े बिना प्रतिभा के। तो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं पिक्चर में, मैंने खुद देखा है, पिछले महीने 2 महीने पहले हम लोग कास्टिंग कर रहे थे, तो कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला अनुपम इसको लीजिए, इसके 2.5 करोड़ फॉलोअर्स हैं। तो तो मैंने कहा और एक्टिंग कितनी आती है उनको? नहीं वो तो फॉलोअर्स मिल जाएंगे ना आपको, तो फंड मिल जाएगा. तो ये बहुत ही गंदा जो इकोस्फीयर बन रहा है वो है नीव, जो अलाहाबादिया ने किया या जो और यूट्यूब वाले कर रहे हैं या और लोग कर रहे हैं, वो तो सिर्फ एक लक्षण है गहरी बीमारी का.
अनुपम जी, जो इस विवाद को लेकर जो पूरा बवाल मचा हुआ है भारत में और जो प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, एफआईआर लॉन्च हो रहे हैं, इसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या ये बवाल सही है?
देखिए, आउटरेज का जहां तक सवाल है, एफआईआर का सवाल है, हम और आप बात कर रहे हैं तो आपका और हमारा बात करना ही अलाहाबादिया के लक्ष्य को पूरा करता है. उनका क्या था, ये लोग मेरे बारे में बात करें बिना किसी प्रतिभा के? तो एक विवाद खड़ा कर दिया जाए, विवाद विवाद के नाम पे. अब जहां तक आउटरेज की बात है तो आउटरेजेस तो है ही, लेकिन मजेदार बात ये देखिए कि मैं को कहीं से भनक पड़ती है कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा, मैं आउटरेज हो जाता हूँ, मुझे गुस्सा आता है, फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं उन्हीं के चैनल पे जाके पूरा देखता हूँ कि भाई कहा क्या उन्होंने.
जी,
तो आउटरेज से ज्यादा मुझे ज्यादा खुशी होगी एज अ फिल्म मेकर और मीडिया में हूं मैं इतने टाइम से, हम सभी मीडिया वालों को बड़ी खुशी होगी अगर ऐसे लोगों को, छोटी छोटी चिंगारियों को हवा दे के आग ना बनाया जाए.
जी,
अब यूट्यूब पे उन्होंने बोला, अब मैं तो यूट्यूब से पूछूंगा कि आपकी कॉन्टेंट की क्या पॉलिसीज है. हम सेंसरशिप में विश्वास नहीं करते, आप पत्रकार हैं, आप भी सेंसरशिप में विश्वास नहीं करते
जी.
लेकिन कहीं तो सीमाओं को लांघने पे कुछ तो होना चाहिए ना. तो ये जो आउटरेज है ये कुछ तो बिल्कुल ही जायज है, होनी चाहिए, और कुछ आउटरेज है कि यू नो पुरानी कहावत है ना यूपी की, भूस में आग लगा के जमा लो दूर खड़े.
जी,
तो इन्होंने वही किया, आग लगा के खड़े में. अब एफआईआर हुआ है उनके अगेंस्ट, जाएंगे, जो कुछ होगा वहां पे होगा.
वहीं विश्व हिंदू परिषद ऑफ ऑस्ट्रेलिया साउथ ऑस्ट्रेलिया चैप्टर के राजेंद्र पांडे बताते हैं.
नमस्ते, मेरा नाम राजेंद्र पांडे है और मैं विश्व हिंदू परिषद ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं. मैं रणवीर अलाहाबादिया और उसके जैसे जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनका बहुत सम्मान करते हैं हम लोग विश्व हिंदू परिषद, मैं पर्सनली और हमारा संगठन, क्योंकि ये एक तरह से हमारे समाज में आजकल काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा. लेकिन जब भी आप कुछ क्रिएट करते हैं, जब आपको सम्मान मिलता है, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप लोगों को प्रभावित करते हैं. मेरा अनुरोध और विश्व हिंदू परिषद का अनुरोध यही है इन कंटेंट क्रिएटर से और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से कि ये अपनी पोजीशन का बहुत ही ध्यान से प्रयोग करें.
जी.
ये जो रणवीर अलाहाबादिया का रिसेंट जो कमेंट था समीर रैना के शो पे, वो बहुत ही आपत्तिजनक था. हमारे फैमिली वैल्यूज जिसके लिए विश्व हिंदू परिषद खड़ा होता है उसके अगेंस्ट था वो. और जो हम काम कर रहे हैं ताकि हमारे समाज में हमारा जो कल्चर है, हमारे जो संस्कार बने रहें, उसको बहुत ही बड़ा आघात पहुंचा है ऐसे कमेंट से. मैं भी उनको सुनता था, मेरा बेटा भी सुनता है, तो मुझे शर्म आ रही है पूछने में कि उसने सुना है कि नहीं सुना है. उस जैसे अगर हम ट्रैफिक लाइट भी जंप करते हैं तो हमारे पर एक जिम्मेदारी है ना, फाइन भरना पड़ता है
जी.
कोई कम तो उसी तरह से ये भी अगर कोई गलत करता है तो बस सॉरी मांग के नहीं निकल जाएंगे आप, एक्सीडेंट होगा सॉरी मांगे छूट जाएगा, नहीं होता ना. तो सबका अब क्या उसका पेनल्टी है ये तो समाज और कोर्ट निर्धारित करेगा. अंत में मैं यही कहूंगा कि हमें किसी को बॉयकॉट करने का हमारा कभी भी कोई उद्देश्य नहीं होता. हम सबको मानते हैं कि एक अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन हमें अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स को जो अच्छे ही विचारधारा से आते हैं, हमारे समाज में अच्छी बातों को, अच्छे संस्कारों को प्रमोट करेंगे, हमें उनको ही एक्सेप्ट करना है. तो हमें ये हमारी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है. तो हमेशा रणवीर अलाहाबादिया जैसे लोग और समय रहना और ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो हमेशा रहे हैं और रहेंगे भी. हम लोगों को ये प्रयत्न करना चाहिए और ये बीड़ा उठाना चाहिए कि जो ऐसा गलत बोलेगा हम उसके शो में नहीं जाएंगे
जी.
और हम अपने बच्चों को जो नहीं सुना सकते, और ये टेस्ट होना चाहिए कि अगर ये आप कोई भी कंटेंट है आप अपनी माता बहन अपने बच्चों के साथ बैठ के सुन सकते हो तो अच्छी बात है. अब राजू श्रीवास्तव जैसे थे हास्य कवि और पहले भी कितने रहे वीर रस के और हास्य रस के कवि, कभी उन्होंने कभी आपत्तिजनक मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया अपने प्रमोशन के लिए. पर अब ऐसा है, देखने में आया है ये ऐसा डाउन वर्ड स्लोप है कि सब लोग इट्स अ रेस टू द बॉटम, एवरीवन हर कोई गलत गलत गंदा गंदा कितना गंदा बोल सकता हूँ इसकी ये होड़ लग गई है
जी।
तो ये हमारे समाज के लिए बहुत ही खतरनाक एक साइन है और इसको समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ऐसे लोगों को इनको अनसब्सक्राइब करें, इनके शो में ना जाएं, ताकि इनको इनको और बाकी लोगों को संकेत मिले कि ये आपत्तिजनक मटेरियल पे एंटरटेनमेंट करना एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे सोसाइटी में।
आपको बता दें भारत में सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया की टिप्पणी पर उन्हें जबरदस्त फटकार लगाते हुए कहा कि उनके दिमाग में कुछ बहुत गंदा है जो उगल दिया गया है। अलाहाबादिया को स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडिया गॉट लेटन में आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि समाज के कुछ मूल्य होते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।